भुवन में सारी तिराग भी ज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमाउ त्रियोग समारी के। मंगलाचरण के पश्चात हम चौथी डाल में क्रम प्राप्त नौवें श्लोक की ओर चलते हैं, जहाँ सम्यक ज्ञान की महिमा के पश्चात आज सम्यक चारित्र के विषय में बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश हरु सकल देश सदा सुभेद कहिजे। त्रसे हिंसा को त्याग वृथा था वर न संगारे, पर बधिकार कठोर निंदे नहीं भयन उचारे। अर्थात पूर्व के 8 श्लोकों में सम्यक ज्ञान की महिमा का खूब बखान किया है कि परम अमृत के समान है सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान के होते जो ज्ञानी है वह अपने असंख्य कर्मों की निजता करने में वो परफेक्ट हो जाता है, अर्थात सफल हो पाता है। इसलिए लाख बात की बात यही है कि सम्यक ज्ञान को हृदय में बसा लो और जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करो, सच्चे देव साध गुरु की बात को मानो और अपनी आत्मा के ध्यान में भी लग जाओ। उसके आगे क्या कहा कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, यानी आप सम्यक ज्ञानी बन गए, खूब सारा उपाय कर लिया, सम्यक दर्शन चूंकि हो चुका तब सम्यक ज्ञान तो होगा ही। और उस सम्यक ज्ञान के बाद आपको क्या करना है, दृढ़ चारित्र लीजिए, चारित्र को ग्रहण कीजिए, माने अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करें, चारित्र को धारण करें, अणुरथों को धारण करें। तो उस चारित्र के यहाँ पर दो भेद कहते हैं, एक देश और सकल देश तस भेद कहीजे कहीजे, अर्थात एक देश चारित्र और सकल चारित्र। एक देश चारित्र का मतलब क्या है, अणुव्रत रूप, यानी जो 5 पाप हैं इनका आंशिक रूप में त्याग करना। 5 पाप कौन से हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप हैं संसार के अंदर। इन 5ों पापों में लिप्त होकर मानो अपने को बहुत चतुर समझने लगता है। अगर कहीं चतुराई से किसी क्या सेंध लगा के चोरी कर ली, वो अपने घमंड में चूर हो जाता था, देखो मैंने कितनी सफाई से चोरी की, वो सेठ जान भी नहीं पाया। ऐसे ही सफाई से कुछ लोग झूठ बोल लेते हैं, हिंसा कर देते हैं, तो लेकिन पाप जो है कभी ना कभी ऊपर आ जाता है। तो इन 5 पापों को ये किसी ने शुरू नहीं किए, 5 पाप अनादिकाल से, जब से सृष्टि है, जब से प्राणी है, तब से ही पाप की ओर व्यक्ति बढ़ रहा है। तो 5 पापों का एक देश त्याग करना माने आंशिक रूप में त्याग करना, वह कहलाता है देश चारित्र। माने जैसे हिंसा है तो अहिंसाणु व्रत जब लेंगे तो अहिंसाणु व्रत में क्या होता है, हिंसा के 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। समझे ना, ये सबके ध्यान देने की चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन रोजमर्रा की चीजें होने से हर व्यक्ति के आचरण में आती हैं। तो इन 4 प्रकार की हिंसाओं में से एक संकल्पी हिंसा ऐसी है कि जिसको हर प्राणी त्याग कर सकता है। हम संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे, चाहे वो खटमल है, चाहे जूं है, और चाहे मक्खी, मच्छर, ततैया, कॉकरोच, कुछ भी है, हम संकल्प लेकर आज मुझे इसे मारना ही है, ऐसा संकल्प लेके नहीं मारेंगे तो संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया। अब आप पोछा लगा रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, तो अनजान में किसी की हिंसा हो गई तो वह हिंसा आपके लिए क्षम्य है, आपने संकल्प नहीं लिया है। यानी संकल्प पूर्वक नहीं मारा है तो कोई जीव अनजान में मर गया तो उसका पाप नहीं लगेगा, और संकल्पी हिंसा माने संकल्प नहीं किया कि हम नहीं मारेंगे, तो अगर जीव की विराधना नहीं भी हुई, जीव नहीं भी मरा मरा तो प्रमाद के कारण आपको पाप लगेगा, समझ गए ना। इसलिए त्याग का बड़ा भारी महत्व है। तो इसलिए कहा कि जैसे ऐसे ही अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत सत्य बोलने का नियम ले लिया, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग आ गया तो गृहस्थ लोग थोड़ा, अब घर के अंदर घी सामान चीजें हैं लेकिन महिलाएं पति से कह देती हैं खत्म हो गया, तो वह सत्यानुव्रत में झूठ झूठ का दोष नहीं लगता, उतना आपके लिए क्षम्य है। अगर कुशल महिला इतना भी नहीं करेगी तो वस्तु खत्म हो गई और घर में कोई मेहमान आ गए तो आपको बिना बिना घी का खाना देना पड़ेगा, यानी तब आप कुशल महिला नहीं कहला सकती। इसलिए एक देश कहा कि जो गृहस्थी जन है वे थोड़ा थोड़ा झूठ बोलेंगे भी, थोड़ी हिंसा उनसे हो भी जाएगी, तो उनके लिए क्षम्य है। इसलिए अणुव्रतों को धारण करने वाले गृहस्थ जो श्रावक श्राविकाएं पुरुष महिलाएं हैं उनको इन सब डिटेल को जानना है। कुछ लोग लेते ही नहीं, अरे भैया हमसे तो नहीं पलेगा। अरे क्यों नहीं पलेगा, आप किसी का गला काटने के लिए किसी से विश्वासघात करने के लिए झूठ ना बोले, पलेगा सब घर में रह करके ही अणुव्रती श्रावक वगैरह होते ही हैं। तो एक देश पापों का त्याग कर देना, अब जैसे ब्रह्मचर्य व्रत है तो गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी के सिवाय बाकी सबको, सभी महिलाओं को बहन और माँ के समान देखते हैं। महिलाएं क्या हैं, सभी पुरुषों को पिता और पुत्र के समान, भाई के समान देखते हैं। तो यही ब्रह्मचर्यानुव्रत है। और जब पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लिया जाता है, शादी नहीं करना, पुरुष मात्र का त्याग कर देना, तो समझो वो पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। और इसी प्रकार से परिग्रह है, परिग्रह महापाप है। तो गृहस्थ लोग क्या करते हैं, उसका प्रमाण करते हैं। साधु लोगों को पूरी तरह से परिग्रह का त्याग होता है और गृहस्थ लोग उसका प्रमाण कर लेते हैं। एक मकान है, चार मकान का नियम ले लिया, 1 करोड़ की राशि है अपने पास तो 10, 20, 100 करोड़, क्योंकि 3 लोग की संपत्ति के पाप से मुक्त होने के लिए अधिक से अधिक भी परिग्रह कर लिया तो उसकी सीमा बन जाती है। इसलिए परिमाण यानी लिमिट बना लेना, हर चीज की लिमिट, धन संपत्ति की लिमिट बना लेने से वो परिग्रह प्रमाण व्रत हो जाता है। और हर मनुष्य को, चाहे बालक हो बालिका हो, 7.25 साल के अगर हो गए गर्भ से ही 9 महीने मिलाकर उसके 8 वर्ष हो जाते हैं, तो 7.25 साल के बाद हर व्यक्ति अणुव्रत लेने का अधिकारी बन जाता है, समझे ना। जो एक देश चारित्र की बात मैं बता रही हूँ, अहिंसाणुव्रत सत्यानुव्रत अचौर्याणुव्रत, किसी की गिरी पड़ी चीजों को नहीं उठाना, महिलाएं अपने पति की जेब से बिना कहे पैसे नहीं लें, लेकिन अगर छोटा मोटा टैक्स की चोरी लगती है या कहीं कोई संकट आने की स्थिति होती है तो वो गृहस्थ के लिए क्षम्य होता है। अचौर्याणुव्रत ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाणव्रत, ये बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति ले सकता है। हमारे यहाँ कई बच्चे आते हैं, हमारे संघपति अनिल कुमार जी हैं, उनका बेटा अतिशय जैन, अब तो शादी भी हो गई है, 7.25 साल की उम्र में आए कि माता जी आपने कहा था 7.25 साल में हम 8 साल के हो जाएंगे 9 महीने गर्भ के मिलाकर, उसने आकर के अणुव्रत लिया। आज तक उसकी डायरी उसके पास रखी हुई है। इसी प्रकार से उसके भांजे ने यानी अनामिका जैन जो संघपति हैं, उनके पुत्र दिव्यांश जैन आए, उनने भी कहा हम भी अणुव्रत लेंगे, ले लिया, क्या हमारे मामा जी ने लिया तो हम भी लेंगे। ऐसे उनकी दूसरी बहन है अंतिमा जैन, उनके बेटे आए, उनने भी अणुव्रत ले लिया। तो ये परंपरा क्यों चली, क्योंकि अनिल जी ने सबको बताया कि देखो छोटे छोटे रूप में भी पापों का त्याग करके हम एक देश चारित्र को ग्रहण कर सकते हैं और अपने पापों के भार को हल्का कर सकते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र की बात, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो देश चारित्र मैंने आपको बताया पांच अणुव्रत जब लिए जाते हैं तो गृहस्थ श्रावक श्राविका देश चारित्र के धारण करने वाले होते हैं आंशिक रूप में, और सकल चारित्र जो मुनिराज मुनि और आरिकाएं त्याग करते हैं, पांचों पापों का पूरी तरह त्याग कर देते हैं। यहाँ पर श्रावक श्राविकाओं की गृहस्थों की बात चल रही है, तो उसमें कहा त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संघारे, यानी ये भव्यात्माओं त्रस हिंसा का तो बिल्कुल त्याग कर दो, हम दो इंद्री से लेके पांच इंद्री तक के जीवों को किसी भी हालत में नहीं मारेंगे, और बेकार में स्थावर जीव की भी हिंसा मत करो, एक इंद्री जीव की, पानी बह रहा है तो बह रहा है कोई परवाह नहीं है, तो उसको सेव करो। आग जल रही है, गैस जल रही है तो जल रही है, क्योंकि आपने को त्याग की कोई बात नहीं रहती। तो इसमें कहा कि जब आप एक देश चारित्रधारी बनना चाहते हैं तो बेकार में स्थावर जीवों की, चाहे वो अग्नि कायिक है, चाहे जल कायिक है, चाहे पृथ्वी कायिक है, चाहे वायु कायिक है, चाहे वनस्पति कायिक है, बिना मतलब के रौंदे जा रहे हैं वनस्पति को, तो ये पाप नहीं करना। और पर वद कार कठोर निंद नहीं बचन उचारी, तो ऊपर की पंक्ति जो है वो अहिंसानुवृत्ति के लिए कहा, और सत्यानुवृत्ति के लिए क्या कह रहे हैं कि दूसरों को वध करने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कठोर निंदा के वचन नहीं बोलना चाहिए, तब सत्यानुवृत्त। बहुत सच्चे हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन ऐसे वचन बोलते मर्मच्छेदी कि हृदय के अंदर जाके घुस जाए, यानी शरीर का घाव तो भर जाए लेकिन वचनों का घाव कभी कभी नहीं भरता। ऐसे कठोर वचनों को नहीं बोलने वाले सत्यानुव्रत की धारक होते हैं। तो इस प्रकार से एक देश पापों का त्याग करना अणुव्रत कहा है, एक देश व्रत कहा है, उनमें से पांच अणुव्रतों में से दो अणुव्रतों की अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत की बात बताई है। अब आगे देखिए, जल मृतिका बिन और नाहीं कछु गही अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रही विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम ननाखे। एक एक चीज को कितने अच्छे से खोला, क्या अहिंसानुव्रति बन गए, सत्यानुव्रति बन गए, अब अचौर्याणुव्रति कैसे बनेंगे। जल और मिट्टी इनके बिना और कोई भी गिरी पड़ी चीज को कभी नहीं उठाना। अब जल और मिट्टी की छूट क्यों करी, क्यों मिट्टी सबकी होती है, मिट्टी किसी एक की एक नहीं होती है, और जल बहता हुआ जल नदी है, समुद्र है, इनकी नहर है, कुएं हैं, इनके जल को सब लोग लेते हैं, इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जल और मिट्टी के बिना बाकी कोई भी चीज को बिना पूछे किसी से नहीं लेना, तो वह अचौर्याणुव्रत हो गया। जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल में, कभी पेंसिल चुरा के ले आए, या कभी किसी की छोटी मोटी चीज भी ले आए, अगर घर के मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे अगले दिन दूसरी चीज चोरी करके लाएंगे, कल को तीसरी चीज। तो बच्चों को बताया जाता है कि आप चोरी नहीं करेंगे, एक पेंसिल भी किसी की उठा के नहीं लाएंगे। आपने कहानी सुनी होगी, एक पेंसिल को चुराने वाला एक दिन चोरों का सरदार बन गया, और जब फांसी पर लटकाने की बात आई तब उसने अपनी माँ की नाक काट ली, और उसने कहा ये माँ, इसने मुझे आज इस फांसी के फंदे तक पहुंचाया है, अगर मैं पेंसिल चुरा के लाया था, अगर उसी दिन मुझे डांट देती, इसने सह दिया और मैं धीरे धीरे चोरी करके चोरों का सरदार बन गया। तो ऐसे ही बच्चों के अंदर शुरू से संस्कार बनना है, आप किसी के कोई पैसे नहीं चुराएंगे, आप किसी की पेंसिल नहीं चुराएंगे। तो इसलिए कहा है कि जल और मिट्टी के बजाय सब चीजों को पूछ करके लेना। साधु तक के लिए कहा, आपको कोई पुस्तक चाहिए, किसी की है, पूछ के लेना, नहीं तो ढूंढता रहेगा, परेशान होता रहेगा, आपको चोरी का दोष लग जाएगा। तो ये अचौर्याणु व्रत हो गया कि जल मिट्टी के सिवाय गृहस्थ जन भी, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, बालिकाएं हैं, किसी की भी चीज को बिना पूछे नहीं लेना। निज बनिता ये तो अचौर्याणु व्रत हुआ, अब ब्रह्मचर्याणु व्रत। वनिता माने स्त्री, अपनी स्त्री के बजाय सकल नारी सो रही विरक्ता, संपूर्ण नारियों से विरक्त जो रहते हैं। विरक्त मतलब बोलने चालने की बात नहीं, बोलेंगे लेकिन उनके प्रति गलत दृष्टि नहीं करेंगे, बस इतना ही ब्रह्मचर्याणु व्रत। ऐसे महिलाओं के लिए देखो, जो भी शावकाचार बनते हैं पुरुषों के लिए कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नारियों के लिए श्रावकाचारी कोई अलग से बन जाएंगे। वही श्रावकाचार मतलब स्त्री पुरुष इन चीजों को ऐसे व्यवहार करें तो नारियां पुरुष मात्र के प्रति विरक्त रहें अपने पति के अतिरिक्त। ये हो गया ब्रह्मचर्याणु व्रत। अब आया परिग्रह प्रमाण व्रत। तो अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, अपनी शक्ति को देख करके और थोड़ा परिग्रह रखना चाहिए। पुनः आगे दस दिस गमन प्रमाण, ठान तस सीम ना नाखे। दसों दिशाओं का प्रमाण रख करके आगे गुण व्रतों की भी बात, यहाँ एक लाइन तक, जो तीसरी लाइन है यहाँ तक तो पांच अणुव्रत हो गए। अब उसके बाद तीन गुण व्रत की भी बात कहेंगे। पांच अणुव्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत शावकों के होते हैं। तो उनमें से प्रथम गुण व्रत की भी बात इसके अंदर कही गई है कि दसों दिशाओं में जाने का प्रमाण कर लेना कि हम भारत के अंदर दसों दिशाओं को छोड़ करके विदेश नहीं जाएंगे, या कोई पर्व आ गया तो हम बस इतनी दूर से ज्यादा नहीं जाएंगे, एक गांव दो गांव ऐसे, या किलोमीटर की सीमा रख लेते हैं, उस सीमा को उल्लंघन नहीं करते हैं। तो आगे गुण व्रत जो कि आगे के व्रतों को वृद्धिंगत करने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए होते हैं, तीन गुण व्रत होते हैं। उन गुण व्रतों की चर्चा आगे के लिए करेंगे। दिग व्रत, तेज व्रत, अनर्थ दंड व्रत। तो जो दसों दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा का निश्चय किया जाता है उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, ये दिग व्रत नाम का गुण व्रत है। तो इस प्रकार से श्रावक पद में रहकर, गृहस्थी रह करके और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अणुव्रती बने और पापों की निर्जरा करके पुण्य कर्म का बंद करें। इसीलिए सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का वर्णन इस 6 डाला के अंदर किया गया है। प्रश्न आया है।